प्रिय शिक्षार्थियों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं संचार माध्यम और उनके प्रकार। शिक्षार्थियों, आजकल मीडिया शब्द का प्रयोग आम जीवन में हर स्तर पर हो रहा है और आप भी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते होंगे, लेकिन मीडिया का स्वरूप क्या है, मीडिया किस प्रकार कार्य करता है, मीडिया के कितने रूप बदल गए हैं, कितने प्रकार हैं, इन सारी बातों की चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि संक्षेप में आपको इस विषय के बारे में एक पूरा चित्र सामने आ जाए। विषय, जैसा मैंने बताया, संचार माध्यम और उनके प्रकार। यह समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि संचार क्या है, इसे जान लें। शिक्षार्थियों, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। पहले के जमाने में आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली और आज उसका पूरा रूप बदल गया है। वास्तव में किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार माना जाता है और संचार का जो विस्तार हुआ है उसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक एक समय में सूचना पहुंचाई जा सकती है। जैसा मैंने बताया कि हमने अलग अलग समय पर अलग अलग साधनों का प्रयोग किया, लेकिन आज अखबार, रेडियो, टेलीविजन, फोन, इंटरनेट आदि संचार के अनेक माध्यमों का प्रयोग आप देखते होंगे। एक जमाना था जब सूचना पहुंचाने के लिए पैदल या घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता था। आपने सुना होगा कबूतरों का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का प्रसार हुआ, डाक व्यवस्था का प्रबंध हुआ, तो पत्रों के माध्यम से संवाद एक से दूसरे के पास पहुंचाया जाता था। लेकिन जब मनुष्य की जरूरतें बढ़ती गईं और तकनीक का प्रयोग बढ़ता गया तो संचार माध्यमों का विकास हुआ। दुनिया में गति तेज हो गई, आगे बढ़ने की होड़ लग गई और ऐसी स्थिति में दूसरे तक संचार को प्रसारित करना एक प्रतियोगिता का रूप बनता चला गया। अगर हम उद्देश्य के बारे में जानें, तो जो संचार के विभिन्न माध्यम मैंने अभी आपको बताए, उनका मुख्य उद्देश्य होता है सूचना पहुंचाना, मनोरंजन करना और शिक्षा प्रदान करना। आप सामान्य तौर पर अखबार पढ़ते होंगे, रेडियो सुनते होंगे, टेलीविजन देखते होंगे, तो उसके भी ये तीन लक्ष्य मुख्य रूप से आपके सामने दिखाई देंगे। कई बार आपको लगता होगा कि टेलीविजन और रेडियो मुख्य रूप से मनोरंजन के साधन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार के समाचारों को आप देखते और सुनते होंगे। अखबार की बात करें तो अखबार में आप देखते होंगे कि राजनीति के अलावा खेल, शिक्षा, कृषि, बाजार, यहाँ तक कि शेयर के बारे में या अपराध के बारे में, मौसम के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। तो इस तरह से जो संचार का क्षेत्र है, वह काफी व्यापक हो गया और इसीलिए आपको अखबारों में विविधता दिखाई देगी, रेडियो और टेलीविजन पर जो आप न्यूज सुनते और देखते हैं उनमें बहुत विविधता दिखाई देगी। अगर संचार माध्यमों के प्रकार की बात करें तो हम मुख्य रूप से तीन रूपों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मुद्रित माध्यम, दूसरा श्रव्य माध्यम और तीसरा दृश्य श्रव्य माध्यम। सबसे पहले हम मुद्रित माध्यम को देखते हैं। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत अखबार और पत्रिकाएं आती हैं। आप जानते हैं कि इनमें विभिन्न प्रकार के समाचार छपते हैं और देश दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हलचलों का भी विश्लेषण आपको दिखाई देता होगा। अखबार प्रतिदिन छपते हैं, लेकिन आप अलग अलग अखबारों में देखेंगे तो उनका स्वरूप अलग अलग होगा। हर अखबार ने अलग अलग पन्ने निर्धारित कर लिया होता है और आमतौर पर आप देखेंगे तो जो पहला पृष्ठ होता है उसमें सभी देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा किसी महत्वपूर्ण योजना की घोषणा, कोई महत्वपूर्ण फैसला या दुनिया की कोई महत्वपूर्ण हलचल। इसी तरह से ज्यादातर अखबारों में आप देखेंगे कि आखिरी पन्ने पर खेल, दूसरे पन्ने पर स्थानीय खबरें और आखिर के दूसरे पन्ने पर अर्थ जगत की खबरें आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा देश विदेश की खबरों के लिए अलग पन्ने निर्धारित किए जाते हैं। संपादकीय के लिए आमतौर पर आप देखेंगे कि बीच का पन्ना निश्चित किया जाता है। तो यह पूरा एक स्ट्रक्चर होता है अखबारों का और हर अखबार अपने अपने तरीके से उसका निर्माण करते हैं। इसके बाद मैं ये भी आपको बता दूं कि हर अखबार एक परिशिष्ट निकालता है रविवार को सामान्य तौर पर, जिसमें समाचारों से अलग हटकर समाज के विविध पक्षों पर भी जानकारी दी जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को विविध विषयों के बारे में जानकारी देना, उनका मनोरंजन करना और उन्हें जागरूक बनाना। अब हम बात करते हैं अखबार की उपयोगिता पर। शिक्षार्थियों, सामान्य तौर पर अखबार को लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। तीन प्रमुख खंभे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथे के रूप में अखबार को शामिल किया गया है। इसका कारण यह है कि विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसे तोड़ने वालों को दंडित करती है, लेकिन अखबार अक्सर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो गड़बड़ियां होती हैं उन्हें उजागर करता है और लोगों को जागरूक बनाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अखबार लोगों को खबरदार करता है और लोकतंत्र की रक्षा करता है। इसीलिए संविधान में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है और सरकार उसकी आजादी को बाधित करने की कोशिश नहीं कर सकती है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि अखबार केवल सरकारी फैसलों, योजनाओं, नीतियों या कामकाज के तरीकों की तरफ ही लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करता, बल्कि वह बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को भी सामने लाता है और उनके प्रति हमें जागरूक बनाता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है। आप देखेंगे कि अखबारों में बहुत ही अच्छे अच्छे लेख प्रकाशित होते हैं जिनमें डाटा भी दिया जाता है और सावधान भी किया जाता है। इसके अलावा जैसे बढ़ती जनसंख्या है, लिंग भेद है, भ्रूण हत्या है, इस तरह के जो बहुत सारे मुद्दे हैं वह आपको अखबारों में दिखाई देंगे। साथ ही जो संपादकीय पृष्ठ होता है शिक्षार्थियों को बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें अखबार के विचार भी सामने आते हैं और उसके अलावा जो गलत निर्णय लिए गए हैं उन पर भी टिप्पणियां की जाती हैं। अगर यूं कहें कि अखबार लोगों को अपने विचार रखने का एक खुला मंच प्रदान करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी के माध्यम से हम देश दुनिया की हलचलों से परिचित होते हैं, उनमें जो टिप्पणियां आती हैं उनसे अपनी राय बनाते हैं और अपना भी एक विचार विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से अखबार का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसी तरह से अगर पत्रिकाओं की बात करें, पत्रिकाओं का प्रकाशन 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए अलग अलग तरह की पत्रिकाएं आपको मिलेंगी, जिसको साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है। और इन पत्रिकाओं में खास तौर से घटनाओं, समाचारों, सामाजिक, साहित्यिक और कला जगत की जो हलचलें हैं उन पर विस्तार से टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं। और इसका लाभ यह होता है कि आप और हम जो किसी घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं उनके लिए पूरी सामग्री मिल जाती है और हमें समस्या को विस्तार से समझने का मौका भी मिलता है। पत्र पत्रिकाएं सूचनाओं का तेजी से और प्रामाणिक तौर पर प्रकाशन करती हैं और सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी देती रहती हैं और विज्ञापनों के द्वारा भी आपको पता लगता है कि कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं आ रही हैं। विज्ञापन कई बार जो हम उपभोग करते हैं सामानों का उनका भी परिचय हमें अखबारों के माध्यम से होता है। दूसरा, अगर श्रव्य माध्यम की बात करें तो इसमें सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है जिन्हें सुना जा सकता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से रेडियो की बात हम करते हैं। रेडियो एक बहुत ही सशक्त श्रव्य माध्यम है जिसमें कम समय में, कम खर्च में पूरे देश में सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं। और रेडियो के साथ यह भी सहूलियत है कि उसे कहीं ले जाया जा सकता है या आप काम करते हुए सुन सकते हैं और रेडियो की पहुंच भी बहुत ज्यादा है, इसलिए यह एक प्रमुख माध्यम के रूप में हमारे देश में है। और आजकल FM चैनल के माध्यम से हम तरह तरह के मनोरंजन वाले कार्यक्रम सुनते हैं। तो यह जो माध्यम है वह कम समय में हमें सूचनाएं देता है और बहुत कम खर्च में हमारे लिए उपलब्ध होता है। पहले आप देखते रहे होंगे कि जो क्रिकेट के मैच आते थे उसे रेडियो पर सुनने के लिए कितने लोग ललायित होते थे। अब बहुत कुछ दूरदर्शन ने उसका स्थान ले लिया है। तो तीसरा जो माध्यम है वह दृश्य श्रव्य माध्यम, उसके अंतर्गत हम दूरदर्शन को लेते हैं। इसमें श्रव्य के साथ साथ दृश्य माध्यम का प्रयोग होता है, इसलिए इसका प्रभाव हमारे जीवन में ज्यादा होता है। हम टेलीविजन पर कार्यक्रमों को देखते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। ये कार्यक्रम रोचक भी होते हैं और हमारे मन मस्तिष्क में उनकी एक छाप पड़ती है क्योंकि ये विजुअल होते हैं। टेलीविजन पर भी जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं उनमें समाज के विविध पक्षों को दिखाया जाता है, हर पल की घटनाओं को प्रसारित किया जाता है। चित्रों के माध्यम से आप देखेंगे कि घटनाओं का सजीव रूप हमारे सामने आता है। और इसका एक और भी लाभ यह है कि हम घटनाओं को अनुभव कर सकते हैं, हमें लगता है कि हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि टेलीविजन के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे अभी NIOS के द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है दूरदर्शन के माध्यम से, और वह लाइव प्रसारण वास्तव में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी इस माध्यम का बेहतरीन प्रयोग हो रहा है। अगर नए संचार माध्यमों की बात करें शिक्षार्थियों, तो आज हम मोबाइल फोन को ले सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत आसानी से एक दूसरे से संवाद स्थापित किया जा रहा है। आप जानते हैं कि मोबाइल हमारे जीवन का अहम हिस्सा हो गया है, न केवल समाचार के लिए बल्कि फिल्में देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, और यहाँ तक कि फोटो के लिए भी हम मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप फिल्म अपने से बना सकते हैं। तो बहुत सारे उपयोग मोबाइल फोन के हुए हैं, और वास्तव में ऐसा माना जाता है कि मोबाइल फोन के माध्यम से संचार क्रांति आई है, और हम बहुत आसान तरीके से संवाद करने में सक्षम हुए हैं। उसके अलावा कंप्यूटर और इंटरनेट एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में हमारे सामने है। आप जानते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट हिस्सा बन गया है हमारे जीवन का, सभी कार्यों को संपादित किया जा रहा है इसके माध्यम से। अखबार, रेडियो, टेलीविजन पर जितने भी समाचार छपते हैं या प्रसारित होते हैं, उनको संपादित करना, प्रकाशित करना, सारे काम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं। रेडियो और टेलीविजन पर जो समाचार और दूसरे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने में कंप्यूटर और इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके माध्यम से सारे कार्य बहुत ही आसान हो गए, और दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए संवाददाता समाचारों का संकलन संपादन करके मुख्य कार्यालय को भेजते हैं, और उसके बाद उसे प्रसारित किया जाता है। इंटरनेट का एक और लाभ यह भी है कि इसके माध्यम से हम तत्काल सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और किसी को संप्रेषित कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। आजकल वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से आप देखते होंगे आम जीवन में भी कि हम एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं, एक दूसरे तक संदेश आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इंटरनेट का बहुत ही व्यापक रूप हमारे सामने में आया है, और इससे जैसा मैंने बताया कि पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो और टेलीविजन जगत में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए, और आज अलग अलग तरीके से अलग अलग चैनल इसका प्रयोग कर रहे हैं, और वे यह भी कोशिश करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जल्द समाचार पहुंचाया जाए। जैसे आप देखते होंगे कि हमेशा टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारा आकर्षण बना रहता है कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण बातें उसमें बताई जा रही हैं। कोई घटना किसी भी देश या विदेश के कोने में घटती है और तुरंत उसका यहाँ प्रसारण होता है। जैसे आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है तो उसका सीधा प्रसारण किया जाता है, चाहे वह 15 अगस्त को हो या विभिन्न योजनाओं का प्रसारण किया जाए। इस तरह से हम संक्षेप में एक बार समझ लेते हैं कि संचार माध्यम और उनके प्रकार के अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं।
जी
पहली बात यह है कि संचार माध्यमों के जरिए देश विदेश की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाओं और जानकारियों को हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये समाचार एक बड़े ही सशक्त माध्यम है मनोरंजन के साथ साथ जागरूक बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, और इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। मुख्य रूप से 3 माध्यम माने गए हैं, मुद्रित, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार और पत्र पत्रिकाएं आती हैं, रेडियो और टेप रिकॉर्डर श्रव्य माध्यम है, टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है, इंटरनेट मुद्रित श्रव्य दृश्य श्रव्य माध्यम का एक मिला जुला रूप है। अखबारों के बारे में अगर हम कहें तो अखबार प्रतिदिन छपते हैं और पत्र पत्रिकाएं एक निश्चित अवधि के लिए में छपती हैं। उसके अलावा श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों की सूचनाएं या कार्यक्रमों का जो प्रसारण होता है वो निश्चित अवधि में होता है, इसलिए इनके प्रसारण का लाभ उठाने के लिए हमें उस समय का भी ध्यान रखना होता है। जैसे आप देखते होंगे कि मैंने बताया कि NIOS के कार्यक्रम आ रहे हैं, तो आपको समय का ज्ञान होना चाहिए कि किस समय में यह कार्यक्रम आता है, तभी आप उसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है, खास तौर से इस समय कोरोना काल में हम देख सकते हैं शिक्षार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था की गई है अलग अलग माध्यमों से, चाहे वह स्वयं प्रभा हो या ज्ञान दर्शन हो या ज्ञानवाणी हो, अलग अलग चैनलों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। तो यह सिद्ध करता है कि संचार माध्यमों का विस्तार व्यापक रूप में हुआ है और आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट आदि के बिना ज्ञान की कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए इस पाठ को आप परीक्षा के लिए तो पढ़े ही, साथ ही आपको इसके बारे में ज्यादा जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो आपको अधिक से अधिक संचार माध्यमों का प्रयोग करना होगा, खास तौर से कंप्यूटर और इंटरनेट का, और उसके माध्यम से आपकी पढ़ाई भी आसान होगी, ज्ञान अर्जन भी आसान होगा। गूगल के माध्यम से आप देश दुनिया की जानकारियां हासिल कर पाएंगे और साथ ही साथ आप जब कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी आपको इस ज्ञान का सबसे अधिक लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा से आपके सामने एक चित्र आया होगा संचार और उसके माध्यमों के बारे में, और हम चाहेंगे कि आप इस पाठ को बार बार पढ़ें। धन्यवाद।